कोई भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता और सबसे अधिक पापी है वो भी निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा इस दीप दान के द्वारा।
हाँ, तो हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक में दीप दान के सामने ठहर सके। हाँ, तो सचमुच ये जो दीप है भगवान वासुदेव के सामने अगर अर्पित किया जाता है तो बिना किसी बाधा के उनका परम धाम प्राप्त हो सकता है। हाँ, अब कार्तिक में जो है, पूरे कार्तिक में कोई व्यक्ति अगर दीप जलाता है, कपूर के साथ दीप जलाता है, तो उसका फल क्या होता है? और विशेष से द्वादशी के दिन जो जलाए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जितने भी उसके परिवार में लोग पैदा हुए हैं, जो पैदा नहीं हुए पैदा होंगे आगे चल करके, अपने परिवार के मतलब वंश में, और उनके साथ में असंख्य जो पितर हैं, वो सब क्या करेंगे? अपनी इच्छा अनुसार बहुत काल तक स्वर्ग भोगेंगे और फिर भगवान हरि की कृपा से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार बहुत काल तक स्वर्ग भोग करके फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे भगवान हरि चक्रधारी की कृपा से। इतना फल है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान केशव के मंदिर में दिया जलाए, अगर जुआ खेलने के लिए दिया जलाता है भगवान के मंदिर में, सोचिए, वैसे तो जुआ खेलना बड़ा अपराध है, भगवान के मंदिर में जुआ खेलने के लिए भी अगर दिया जलाए भगवान के मंदिर में है, तो वो अपने परिवार की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देगा। सोचो वो नहीं सोचता है कि मैं क्यों दिया जला रहा हूं, वो सोचता है कि जुआ खेलने के लिए दिया जला रहा है, तो भी अपने परिवार की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। कार्तिक के दीपदान का ये फल है। भगवान विष्णु के मंदिर में जो दिया जलाता है तो वो धन संपत्ति से संपन्न होगा और उत्तम यश प्राप्त करेगा। जैसे कि रगड़ से लकड़ी में आग पैदा होती है, उसी प्रकार से दीप दान जो है क्या करता है? धर्म की ज्योति पैदा करता है। दिया भी तो तुरंत जो है ना, मतलब जलता है, जैसे रगड़ने से आग पैदा होती ना, माचिस किसी की रगड़ दे तो आग पैदा होती है, ये माता जी पैर नहीं फैलाना। तो उसी प्रकार से जो है दीप दान के द्वारा धर्म की ज्योति जो है ना व्यक्ति के जीवन में जागती है। और कोई बहुत अभागा है तो उसको भी पूरे महीने दीप दान की व्यवस्था करनी चाहिए किसी प्रकार से भी। बहुत जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है तो वो पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा तक किसी भी प्रकार से दीपदान करे भगवान को। अगर इतना ज्यादा निर्धन है और अभागा है तो चाहे अपने जीवन को बेच दे, वो अपने पूरे जीवन को बेच करके भी वो किसी प्रकार से भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाए कार्तिक में, पूरा कार्तिक। तो कोई मूर्ख जो है व्यक्ति अगर दीप नहीं अर्पित करता है भगवान केशव के मंदिर में कार्तिक में, तो उसको वैष्णव नहीं समझना चाहिए। वो वैष्णव नहीं हो सकता कभी भी। क्या है? मूर्ख है। इस स्कंद पुराण में ये बात कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से। यहां तक कि कार्तिक में जो दीप दान है ना, एक तरफ तो कार्तिक में दीप दान है और दूसरी तरफ अपनी जितनी संपत्ति है सब कोई व्यक्ति अर्पित करे तो भी कोई तुलना नहीं है दीप दान की। क्या समझे? दीप दान इतना जो ना बढ़कर के है कि अपनी संपत्ति, पूरी घर संपत्ति आप सब अर्पित कर दो तो भी उससे बढ़कर के क्या है? कार्तिक में दीप दान। इसका कोई तुलना ही नहीं है। अखंड दीप, कोई व्यक्ति जो है ना अखंड दीप जलाता है भगवान हरि के सामने, तो वो फिर भगवान के धाम में जाएगा कैसे विमान पर, तेजस्वी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में जाएगा और आनंद पूर्वक वहां निवास करेगा। ये बात पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं। और किसी दूसरे का दिया भी अगर कोई व्यक्ति जला देता है, जो बुझ रहा है उसको जला दे, है ना, तो उसका भी जो है कितना बड़ा फल है। जितना फल प्राप्त होता है अन्नदान करने से, पितृपक्ष में अन्नदान करने से, या जलदान ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में जलदान करने से जो फल प्राप्त होता है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। उतना फल अगर कोई व्यक्ति दूसरे के दिए को भी दोबारा जला देता है कार्तिक में, इस महीने में राजसूय यज्ञ का जो फल है, अश्विन यज्ञ का फल है, वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। दूसरे के दिए को अगर जलाए कोई व्यक्ति और वैष्णवों की सेवा करे तो जो व्यक्ति भगवान हरि के मंदिर में किसी दिए को जला देता है, दोबारा जला देता है, तो वो यमराज के यातनाओं को दोबारा फिर नहीं भोगेगा, यमराज की यातना नहीं भोगेगा। दूसरे व्यक्ति के दिए को भी कोई व्यक्ति अगर जला देता है कार्तिक में, तो वो जो फल है वो किसी भी प्रकार से बड़े यज्ञ से भी वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि एक चूहिया ने भी जो ना मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिया और फिर उसको जो है परम गति प्राप्त हो गई, केवल एकादशी के दिन कार्तिक में उसने दिया जला दिया, एक चूहिया। तो ये जो घटना है ये मैं सुनाऊंगा कि वो चूहिया क्या बनी अगले जन्म में और कैसे उसने दिया, बुझते हुए दिया को जलाया था। तो ये स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। जितने भी पाप इकट्ठे हुए हैं, यानी पापों का भंडार जो इकट्ठा हुआ है, तो वो जो है सब क्या होता है, पिघल जाता है, जब तक कि दिया जो है ना मंदिर के शिखर के ऊपर चमकता रहता है। आजकल तो बल्ब चलाए जाते हैं, है ना, तो अखंड दीप की जगह आप बल्ब समझ लेगी, बल्ब जो है अगर कोई व्यक्ति जलाता है, तो कोई व्यक्ति अगर पूरी पृथ्वी का दान करे, समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी का दान करे ब्राह्मणों को, और करोड़ों करोड़ों जो है गौ दान करे, तो भी उसका जो फल है वो जो है भगवान मंदिर, भगवान के मंदिर के शिखर में जो दिया जलाया जाता है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या समझे, भगवान के मंदिर के शिखर में जो दिया जलाए तो 16वें हिस्सा भी नहीं है वो। क्या करोड़ों गऊओं का दान करना और पूरी पृथ्वी का दान करना समुद्र पर्यंत ब्राह्मणों को। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर के शिखर में दिया स्थापित करे या मंदिर के अंदर भी दिया स्थापित करता है, तो वो सैकड़ों अपनी पीढ़ियों का उद्धार करता है और उनके परिवार की भी जो ना लोग उस व्यक्ति के परिवार के लोगों का भी उद्धार हो जाता है जो प्रसन्न होते हैं देख करके, भक्ति के साथ प्रसन्न होते हैं कि भगवान के मंदिर में दिया जल रहा है, तो वो भी नरक में नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों को देखता है दिया जलाते हुए और प्रसन्न होता है, भक्ति पूर्वक प्रसन्न होता है, तो वो भी नरक में नहीं जाएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जो मनुष्यों के द्वारा जलाए हुए दिए को देख करके देवता लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कब इस व्यक्ति का संग प्राप्त होगा। क्या समझे, देवता लोग देखते हैं कि जिस मनुष्य ने भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जलाया है, तो वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति का संग मुझे कब मिलेगा, देवता लोग। तो जो शिखर दीप भगवान के मंदिर के शिखर में दीप जलाता है, तो उसको जो है इंद्र का पद तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से इस बात को। दीपमाला, दीपमाला मतलब दियों की पंक्तियां या बहुत से बल्ब जलाना, ये भी दीपमाला है। तो मंदिर, भगवान के मंदिर के अंदर और बाहर जो इस प्रकार से पंक्तियां जो जलाता है तो उसको जो है भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त होता है, जो शंख और चक्र धारण किए हैं भगवान। और निश्चित रूप से उसके वंश में जो 100 पीढ़ियां हैं वो जो है नरक में नहीं जाएंगी। जो व्यक्ति दीप माला की व्यवस्था करता है भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर और बाहर, तो वो ऐसे रास्ते से जाएगा भगवान के धाम में जिस रास्ते में बहुत उजेला है, मतलब उसी प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था होती है, उस रास्ते से वो जाता है। जो व्यक्ति व्यवस्था करता बड़ी सुंदर दीप माला की कार्तिक में, विशेष रूप से एकादशी के दिन जब भगवान जागते हैं उत्थान एकादशी को, तो वो जो है ऐसा रूप प्राप्त करता है जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है, अपने शरीर से प्रकाशित करता है सब दिशाओं को, और भगवान विष्णु के लोक में वो जाता है। तो कार्तिक में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अंतिम याम में रात्रि में जागना चाहिए, मतलब 3:22 समझिए, 3:22 पर जागना चाहिए अंतिम याम में, जिसको कहते हैं निष्ठांत काल। और स्नान करके व्यक्ति को जो है भगवान का पूजन करे, व्यक्ति भगवान का पूजन करे और वैष्णवों की संगति में उसको भगवान विष्णु के गुणगान श्रवण करने चाहिए, आनंद पूर्वक भगवान विष्णु का गुणगान सुनना चाहिए और मंगल आरती करना चाहिए, सवेरे सवेरे मंगल आरती करना चाहिए। संकल्प मंत्र है इसका, कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन तृत्यर्थं तव देवे तय दामोदर मया सह। ये प्रार्थना है कार्तिक की, हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, तो आप श्रीमती राधिका के साथ हो, तो ये जो महीना है कार्तिक का, इसमें रोज सूर्योदय से पहले मैं स्नान करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। प्रार्थना मंत्र है, तव ध्यानेन देवेश जलेस्मिन् स्नातुम् उद्यतः तत्प्रसादाश्रमे पापम दामोदर विनश्यतु। हे देवेश, मैं इस जल में स्नान कर रहा हूँ और आपका ध्यान कर रहा हूँ, हे दामोदर, मेरे जितने पाप हैं वो आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इस महीने में जितने भी पुण्य कर्म हैं, चाहे वो नियमित रूप से हों जो कि पहले से आदत बनी हुई है वो किए जाएं, या कुछ नए किए जाएं, तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पाप नष्ट कर देते हैं। तो ये कार्तिक का महत्व है। प्रतिदिन व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए भागवत कथा, वैष्णवों की संगति में और नियमित रूप से भगवान की पूजा करना चाहिए, घी के साथ या तेल के दिए के साथ, और विशेष रूप से उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और व्रत लेना चाहिए, कुछ जितना भी अधिक अपनी क्षमता हो उसके अनुसार कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जैसे मौन होकर के भोजन करना और तुलसी को भी दीप दान करना, और वो जो दिया है वो सोने का चांदी का भी हो सकता है दिया। अब कार्तिक के जो है संबंध में दो कथाएं हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, तो सत्यभामा आप जानते हैं भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो वे नहीं जानते कि उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि वे भगवान की पत्नी बनी। तो वो पूछती हैं कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा व्रत किया जिससे कि मैं आपकी पत्नी बनी है? तो भगवान बताते हैं सत्यभामा को कि पिछले जन्म में वो क्या थी। पिछले जन्म में गुणवती नाम की एक स्त्री थी सत्यभामा, और इनके पिता थे देव शर्मा, अत्रि कुल में जन्मे थे, हरिद्वार में रहते थे और भगवान विष्णु के भक्त थे, और उनका शिष्य था चंद्र शर्मा। हाँ, तो ये गुरु और शिष्य जो है एक साथ रहते थे। तो आगे चल करके फिर देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चंद्र शर्मा से, अपने शिष्य से, तो अपने पुत्र के समान घर में रख लिया। इस प्रकार से गुणवती जो है अपने पति और पिता के साथ एक घर में रहती थी। तो एक बार ये दोनों गुरु शिष्य कुशा और समाधा लेने के लिए एक पर्वतों के जंगल में गए और एक भयंकर राक्षस ने उनको मार डाला। तो चूंकि वो क्षेत्र का भी प्रभाव था और भगवान विष्णु के भक्त थे, तो बैकुंठ में चले गए। कौन? गुणवती के पिता और गुणवती के पति, दोनों वैकुंठ में चले गए। तो सत्यभामा अगले जन्म में सत्यभामा जो हुई ना, तो उसके पिता सत्राजित जो है ये थे उसके पिता देव शर्मा, और उसके पति जो है ना जो चंद्र शर्मा थे ये हैं अक्रूर, अगले जन्म में अक्रूर थे। अब ये गुणवती बहुत दुखी हुई, क्यों? क्योंकि उसका अब संसार में कोई नहीं था। तो घर का सब सामान बेच करके पिता और पति का उसने पारलौकिक कर्म किया और बड़ी वहीं रह करके शांत भाव से सत्य और सोच के नियमों का पालन करते हुए विष्णु का भजन करने लगी। जीवन भर दो व्रतों का पालन किया, एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। ये दो व्रत विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। कार्तिक के माह में क्या करती थी? स्नान और दीपदान और तुलसी सिंचन और जागरण करती थी। विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित है जो कार्तिक में ऐसा करे। गुणवती का पूरा जीवन इसमें बीत गया, बूढ़ी हो गई, लेकिन तो भी नियम नहीं छोड़े उसने। अब बूढ़ी थी और बुखार भी था उसको और बहुत दुर्बल थी, तो धीरे धीरे चल करके गंगा के तट पर स्नान करने गई। देखो उसके साथ कोई नहीं, अकेली है, इन नियमों का पालन कर रही है। जल में पैर रखते ही शीत से कांपते हुए गिर पड़ी। गंगा का पानी बहुत ठंडा और बुखार और कमजोरी और बुढ़ापा, गिर गई तो आकाश में उसने तुरंत विमान देखा, आकाश से विमान आ रहा है। दिव्य रूप धारण करके वो विमान में बैठ गई, तुरंत दिव्य रूप धारण किया और विमान में बैठ गई और भगवान विष्णु के समीप उसने स्थान प्राप्त किया। तो चूंकि उसने विष्णु के द्वार में तुलसी की वाटिका लगाई थी, इसलिए उसके आंगन में कल्प वृक्ष लगाया भगवान ने। उसने भगवान के आंगन में तुलसी के वृक्ष लगाए, इसलिए भगवान ने उसके आंगन में क्या लगाया? पारिजात वृक्ष लगाया। और कार्तिक में दीपदान किया था उसने, इसलिए उसको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई। स्थिर लक्ष्मी में धन संपत्ति प्राप्त हुई। सभी कर्मों को पति स्वरूप विष्णु की सेवा में निवेदन किया, इसलिए विष्णु की पत्नी हुई। मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसका अनंत फल प्राप्त हुआ। क्या? भगवान विष्णु पति के रूप में उसको प्राप्त हुए। तो यह है कार्तिक महात्म्य के बारे में। अच्छा, और एक दूसरी घटना है मदालसा की, जो कि चुहिया थी पिछले जन्म में। तो मदालसा जो है एक राजा की पत्नी थी। तो एक बार राजा ने बुलाया तो वो देर से पहुंची, तो उसने कहा कि तुमको मैं जब बुलाता हूं तो तुरंत आती हो तुम, इस बार तुमने देर क्यों लगाई? जब मैंने बुलाया तो तुमने देर क्यों लगाई? तो उसने कहा कि मैं विष्णु के मंदिर में दीप दान करने गई थी। तो उसके पति ने पूछा कि इसका क्या फल होता है, तो उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी भगवान के मंदिर में, एक चूहिया, तो कार्तिक की एकादशी थी, कार्तिक का महीना, फिर उसमें एकादशी का दिन था, तो चूहिया जैसे चंचलता के कारण क्या है कोई हर चीज मुंह अपना मारती है ना, तो दिया जल रहा था वो बुझने वाला था, तो मैंने अपना मुंह मारा उसमें तो दिया जलने लगा, लेकिन वो जो है ना मेरा मुंह भी जल गया, तो उस कष्ट के कारण मैंने प्राण छोड़ दिए, लेकिन वो दिया जलाने का जो फल है, जो दूसरे का दिया भी जो ना जो बुझ रहा था उसको जलाने का जो फल ये मुझे प्राप्त हुआ कि मैं जो है ना रानी बनी, एक चूहिया से क्या बन गई, रानी बन गई, कितनी अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है ना। तो इसलिए जो है मैं दीपदान करती हूँ कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में। तो ये जो है कुछ बातें हैं कार्तिक के महात्म्य की। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? इनका प्रश्न है कि अगर हम मंदिर से दूर रहते हैं तो अपने घर में दीप जलाते हैं तो वो भी दीपदान है। हाँ, हमने पढ़ा इसमें कार्तिक महात्म्य, कोई व्यक्ति अपने घर में भी भगवान के लिए दीप जला सकता है ना, तो दीपदान का बहुत फल होता है। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि दीपदान जब हम करते हैं तो हमने बताया कि नियम यही है कि पहले राधा कृष्ण को करें और इसके बाद फिर सीताराम को, और मंदिर में और भी अगर कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं शिव जी की या दुर्गा जी की तो उनको भी दीपदान करें, तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि प्रत्येक जीव भगवान विष्णु का मंदिर है ये समझ करके हमें दीपदान करना चाहिए। तो प्रत्येक हृदय में भगवान निवास करते हैं तो परमात्मा के रूप में है वो, तो इस प्रकार से जितने भी देवताओं की मूर्तियां उनको भी दीपदान करके, वैसे भी सामान्य नियम है कि जब आरती भगवान की उतारी जाती है तो भगवान की आरती के बाद गुरु को भी आरती करते हैं और फिर वैष्णवों की आरती करते हैं, फिर सब जीवों की आरती करते हैं, इसलिए चारों तरफ आरती को घुमाया जाता है ना। तो इसका ही मतलब है कि बाकी जितने भी प्राणी हैं तो उन सबकी भी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का मंदिर है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो जब प्रत्येक जीव का जो है सम्मान करना चाहिए तो फिर जो देवता हैं तो उनके लिए क्या कहना। ठीक है, और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि सवेरे सवेरे स्नान करके तुलसी को दीप दान करना चाहिए तो जैसा कार्तिक में बताया गया है तो हम क्यों नहीं करते? वैसे तो ये जो आरती हम लोग उतारते हैं तुलसी महारानी की आरती करते हैं तो इसको भी दीपदान माना जा सकता है। अच्छा, पहले इनके प्रश्न का उत्तर दूं मैं। इनका कहना है कि जो तुलसी की आरती उतारते हैं तो वो दीपदान तो नहीं हुआ। दीपदान का तो भाव होता है कि भगवान को अर्पण किया जाए दीपदान। हाँ, वैसे तो आरती अलग है और दीपदान अलग है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में दिया जलाता है या वो अर्पित करता है तो वो जो है उसका बहुत फल है दीपदान का। जैसे इसमें कार्तिक महात्म्य बताया गया है कि जो व्यक्ति दीपदान करता है तो कोई दूसरे भी कृत्य जो है ना, जिनमें अगर मंत्रों का भी उचित पाठ नहीं हुआ है या विधि का पालन नहीं हुआ है या पवित्रता के नियमों का पालन नहीं हुआ है तो भी वो पूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं। तो इनका प्रश्न है कि क्या अगर स्नान नहीं कर सकते हैं बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण तो क्या हरिनाम नहीं जप सकते हैं? किसने मना किया? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। तो भगवान की तो इतनी कृपा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, अपने नाम में संपूर्ण शक्ति डाल दी है और इस नाम के जप करने का कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन तो भी दुर्भाग्य है क्या कि हम लोग नियम बनाते हैं, है ना। तो ये नियम, ये जो है ना नियम जो बनाए हैं ये अपने ढंग से कोई व्यक्ति अगर बनाए तो अपना ही दुर्भाग्य है। वो कहता है ऐसे जाप नहीं करना, वैसे जाप नहीं करना, इस समय जाप नहीं करना, ऐसे स्थान में जाप नहीं करना है ना, तो ये अपना दुर्भाग्य है, अपना अज्ञान है। भगवान के नाम का जो कीर्तन है, उच्चारण है, ये कोई व्यक्ति सोते जागते हर समय करे, ठीक है ना, ये करे। लेकिन हाँ, माला पर जाप करना है तो जरूर माला अशुद्ध ना हो, है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वैसे मुख से उच्चारण किया जा सकता है भगवान के नामों का, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति स्नान कर सकता है तो स्नान करके जो है जाप करे और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ दोष नहीं है कि इस समय जाप नहीं करना चाहिए भगवान के नामों का, ठीक है। धन्यवाद। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री सुधा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।